From the Conference Center,
Salt Lake City, May Temple Square पर सम्मेलन केंद्र से यह The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints का 181 अर्धवार्षिक जनरल सम्मेलन है. इसे चर्च के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों में से चुने गए वक्ता संबोधन करेंगे. इस सेशन का संगीत मॉर्मन टैबरनेकल क्वायर द्वारा होगा. यह प्रसारण बॉनिविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है. बिना लिखित अनुमति से इस कार्यक्रम का नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलोम या अन्य उपयोग वर्जित है. President Dieter F. Fugdorf, second counselor in the first presidency of the church, is session ka sanchalan karenge.
Dear brothers and sisters, we welcome you this morning to the fourth session of the 181st.
भाइयों बहनों, हम आपके चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटरडे सेंट्स के 181st सेमी एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं. हम अपना अभिवादन उन सभी को देते हैं जो इन कार्यक्रम में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या सैटेलाइट द्वारा भाग ले रहे हैं. हम इस कॉन्फ्रेंस में जनरल अथॉरिटीज और जनरल ऑक्सिलरी प्रेसिडेंसीज की उपस्थिति को स्वीकारते हैं. इस सेशन का म्यूजिक मैक विल्बर के निर्देशन से टैबरनेकल क्वायर देगी और साथ में एंड्री ऑन्सवर्थ और क्ले क्रिस्टियनसन ऑर्गन पर होंगे. क्वायर ने इस सेशन की शुरुआत लीड मी इटर्नल लाइफ, लाइफ इटर्नल गाने के साथ की और अब हम सुनेंगे गाइड अस ओ दाउ ग्रेट यहोवा. गाने के बाद एल्डर पॉल के सबरेस्की, जो 70 के मेंबर के रूप में कल रिहा किए गए, प्रार्थना करेंगे. द क्वायर फिर गाएगी कंसिडर द लिलीज.
our kind and
great. हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इस सुबह आपको शुक्रिया अदा करने के लिए और हमारा आभार मानने के लिए आपके बेटे के लिए ईसा मसीह और उसके क्षतिपूर्ति के लिए हमारे सबके तरफ से हम आभारी हैं प्रधान थॉमस स्मॉन्सन के लिए और उसे प्यार करते हैं उसके सलाहकार और बारह के परिषद बाप धमनोटो के परिषद के लोगों को और सभी कोरम में से लोगों के लिए आपके आशीर्वाद के लिए मांगते हैं हर एक के लिए हम आभारी हैं और आपके बेटे के क्षतिपूर्ति के लिए जो हम सभी को उपलब्ध है और उस तत्व के लिए जो हमें विश्वास के द्वारा मिलता है और हमें प्रायश्चित करने का जो मौका मिलता है और बपतिस्मे का मौका जो हमें आपने प्रस्तुत किया है हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रचारकों के लिए दुनिया भर में कि उनका विश्वास और आज्ञा पालन से आपका आत्मा उन्हें बताएगी क्या करना चाहिए और उनके पास लेके ले जाएगी जो आपकी संदेश के लिए तैयार हैं हम आभारी हैं आपके विवेक के लिए और जो हमें से बात करेंगे जो आपका संदेश हमें हम तक पहुंचाएंगे हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा द्वारा हम वो सब समझ पाएं हर एक को व्यक्तिगत रूप से और फिर से हम आभार मानते हैं आपके लिए आपके बेटे के लिए और प्रार्थना करते हैं आपके आशीर्वाद के लिए आपके बेटे के नाम में ईसा मसीह आमीन
Thank you for this beautiful music. What a blessing you are to all of us, dear choir.
उस मधुर संगीत के लिए धन्यवाद. आज उनके बाद हमारे पहले स्पीकर होंगे प्रेसिडेंट हेनरी बी आयरिंग, मेरे फर्स्ट काउंसलर. उनके बाद कोरम ऑफ द 12 अपोसल्स के एल्डर रॉबर्ट डी हिल्स होंगे. प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द 70 के एल्डर थैड आर कॉलिस्टर उनके बाद हमें संबोधित करेंगे. प्रेसिडेंट आयरिंग, मैं इस द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के जनरल सम्मेलन में आप बात करने के लिए धन्यवाद देता हूँ. गिरजा के प्रत्येक सदस्य के पास ये जैसा पवित्र कर्तव्य है. जब हम अपने बपतिस्मा लिया था तब हमने इसे स्वीकार किया था कि वैसा बनने का वादा किया था. मॉर्मन की पुस्तक के महान भविष्यवक्ता अल्मा से हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर से क्या बनने का वादा किया था. जो दुख से रोते हैं उनके दुख से दुखी होने को तैयार हों, और जिनको सांत्वना की आवश्यकता है उन्हें आश्वासन देते चाहते हैं, और सदैव सभी बातों में चाहे जहाँ भी तुम हो मृत्यु तक परमेश्वर की साक्षी के रूप में खड़े होना चाहते हो, जिससे कि परमेश्वर द्वारा तुम्हारा उद्धार हो सके और तुम्हारी गिनती प्रथम पूर्वजों पाने वाले में जिसका हिस्सा तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त हो सके. यह परमेश्वर से पवित्र और आनंददायक वादा है. आज का मेरा संदेश उत्साह करने वाला है. ठीक जैसे मॉर्मन की पुस्तक इस कर्तव्य को स्पष्ट करती है, वैसे ही हम अनंत जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्देशन भी देती है. पहला, हमने परोपकारी बनने का वादा किया है. दूसरा, हमने परमेश्वर के गवाह बनने का वादा किया है. और तीसरा, हमने अंत तक धीरज धरने का वादा किया है. मॉर्मन की पुस्तक हमें उत्तम तरह से बताती है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं. आओ हम परोपकारी बनने से शुरू करते हैं. मैं आपको कुछ हाल के अनुभवों के बारे में बताता हूँ. आपने कई में से सेवा के दिन में लिया. हजारों की संख्या में पूरे विश्व ऐसे सेवाएं दी गई। आपके संतों के परिषद ने प्रार्थना की कि किस तरह सेवा दी जाए। उन्होंने परमेश्वर से जानने के लिए प्रार्थना की कि हमें किसी की सेवा करनी चाहिए और कैसे सेवा करनी चाहिए। उन्होंने फावड़ों और पानी, पीने के पानी ले जाने ना भूलने की प्रार्थना भी की होगी। सबसे जरूरी उन्होंने प्रार्थना की होगी कि सब जो सेवा करते हैं और वे जब जो सेवा प्राप्त करते हैं परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें। मैं जानता हूं कि कम से कम एक वार्ड में ये प्रार्थना सुनी गई। 120 से अधिक सदस्यों ने स्वेच्छा से मदद की थी। 3 घंटे में अंदर उन्होंने एक गिरजा के मैदान की सफाई की थी। यह एक कठिन और खुशी देने वाला काम था। गिरजा के सेवकों ने आभार प्रकट किया था। उन्होंने जिन्होंने मिलकर काम किया था उन सबके एकता और अधिक प्रेम का महसूस किया था। कुछ ने यह भी कहा था कि घास तोड़ते समय उन्हें आनंद का महसूस हुआ था। मॉर्मन की पुस्तक के शब्द उन्होंने जानने में मदद की थी करते हैं क्यों राजा बेंजामिन ने अपने लोगों से कहा था, तुम समझ जाते हो तब तुम अपने साथी की सेवा करते हो, तब तुम अपने परमेश्वर की सेवा करते हो। प्रभु अपने वादे को पूरा करते हैं जब हम अपने वादों को पूरा करते हैं। जब आप उसके लिए दूसरे की सेवा करते हैं, वह आपको उसके प्रेम को महसूस करने देता है और समय के साथ परोपकार की अनुभूतियां आपकी प्रकृति का हिस्सा बन जाती हैं और आप मॉर्मन के आश्वासन को अपने हृदय में महसूस करते हो। जब आप दूसरों की सेवा करते रहते हो, आपके साथ सब कुछ ठीक होगा, ठीक जैसे आप परमेश्वर से परोपकारी होने देने का वादा करते हो। आप जीवन भर उसके गवाह बने का वादा करते हो, चाहे आप जहां भी रहते हो। एक बार फिर बुक ऑफ मॉर्मन इस वादे में मदद करने की अच्छा मार्गदर्शक है। एक बार मैं एक विश्वविद्यालय के में ग्रेजुएशन सेवा में बोलने के लिए कहा गया था। अध्यक्ष चाहते थे कि अध्यक्ष गॉर्डन बी हेंगली की बुलाया जाए, लेकिन पता चला कि वे उपलब्ध नहीं थे, तो मुझे निमंत्रण मिल गया। मैं 12 प्रोतियों की परिषद का कनिष्ठ सदस्य था। वह व्यक्ति जिसने मुझे निमंत्रण दिया था, वह चिंतित हो गई जब उसने जाना कि एक प्रेरित के रूप में मेरी बुलावट के विषय में पता चला। उसने मुझसे फोन पर बात की और कहा कि पता चला कि कर्तव्य गवाही देनी थी। उसने समझाया कि विश्वविद्यालय के सभी के धर्मों का परमेश्वर की अतिथि में नहीं मानते। उसने फिर से दोहराया, आप अपने कर्तव्य को यहाँ पूरा नहीं कर सकते। मैंने अपने मन में गंभीर प्रश्न के साथ फोन रख दिया, क्या मैं विश्वविद्यालय की बातों दू में वार्ता नहीं कर सकूंगा। यह उस समारोह से कुछ हफ्ते पहले की बात थी। मेरा मन करने से गिरजा का नाम पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मैंने प्रार्थना की और जवाब मिला। मैंने महसूस किया कि नफी अभिनदी अल्मा अम्यूलेक और मुहसाए के बेटों के उदाहरण वह बन जो मैं था। जानलेवा जोखिम के समान वे सब यीशु मसीह के निडर गवाह थे। इसलिए मेरे पास एक विकल्प था, तैयारी कैसे की जाए। उस विश्वविद्यालय के बारे में मैं जानने लगा। जैसे जैसे बोलने का दिन निकट आया, मैं मेरी चिंता बढ़ने लगी। आश्चर्यचकित रूप से मुझे एक लेख मिला। इस विश्वविद्यालय को उस काम के लिए सम्मान दिया गया था जो गिरजा ने पूरे विश्व में अपने मानव सेवा के प्रयास से सीखा था। मैंने कहा था कि मैं जानता हूं कि जिनकी सेवा में हमने और उन्हें की थी, उनके जीवनों में आशीषों का स्रोत यीशु मसीह था। सभा समाप्त होने पर श्रोताओं ने खड़े होकर अभिवादन दिया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन थोड़ा चिंतित भी। मैं जानता था कि अभी निंदा के साथ क्या हुआ था। केवल अल्मा ने उसकी गवाही को स्वीकारा था, लेकिन उस रात बहुत बड़े भोज पर मैंने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को कहते सुना। उस वार्ता में उन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुना था, मसीह के गवाह के रूप में। इस तरह चमत्कारी मुक्ति के मेरे अनुभव असामान्य हैं, लेकिन परमेश्वर का गवाह होने के लिए आपके चरित्र, शक्ति और साहस पर मॉर्मन की पुस्तक का प्रभाव निश्चित है। इस पुस्तक में दिए सिद्धांत और साहसी उदाहरण आपको ऊपर उठाएंगे। प्रत्येक प्रचारक जो यीशु मसीह के नाम और सुसमाचार की घोषणा करता है, उसे मॉर्मन की पुस्तक से प्रतिदिन पोषण मिलने का आशीष मिलेगा। माता पिता जो अपने बच्चों के दिल में उद्धारकर्ता की गवाही पाने में संघर्ष करते हैं, उनको मदद मिलेगी जब वे मॉर्मन की पुस्तक के शब्दों और प्रभावों को घर और परिवार के सदस्यों के जीवन में लाने के तरीके की खोज करते हैं। यह हमारे लिए सच साबित हुआ है। मैं इस आश्चर्यकर्म के हर प्रभु भोज सभा और गिरजे की कक्षा में होते हुए देख सकता हूँ, जहाँ मैं जानता हूँ वक्ता और शिक्षक अपने प्रेम और धर्मशास्त्रों विशेषक मॉर्मन की पुस्तक की पूर्ण समझ करते हैं। वे बहुत आश्वासन से पढ़ते और शक्ति के साथ गवाही देते हैं। मैं प्रमाण भी देता हूँ कि हम बाप्तिस्मा के समय किए गए वादे के तीसरे हिस्से को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं। हमने अंत तक धीरज धरने, जब तक जीवित हैं तब तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का अनुबंध किया है। मैं अपने साथ अपनी दो बेटियों को ले गया था। मैं नहीं जानता था कि वो उन्हें पहचानेगी। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराई। मैं उसके देखने को हमेशा याद रखूंगा। उसने उन्हें गले आगे उसके निकट आने को कहा। वह बेटी उसने गले लगाया और अपने परिवार से उनको परिचय किया। उसने उन छोटी लड़कियों की महानता के विषय बोला था। यह ऐसा था मानो कि वह राजकुमारियों को राज दरबार में पेश कर रही हो। मैंने अपनी भेंट की जल्दी खत्म होने की आशा की। मैंने सोचा था कि वह थकी होगी, लेकिन मुझे देखना में ऐसा लग रहा था कि मानो कि उसकी उम्र कम हो गई हो। वह स्वस्थ और स्पष्ट रूप से हम सभी के लिए प्रेम से भारी हुई थी। वह लगता था उस क्षण का भरपूर आनंद लेना चाहती थी। वह मॉर्मन की पुस्तक की घटना को जानती थी। पुनर्रक्त उद्धारकर्ता ने छोटे बच्चों को एक एक करके गले लगाया था। मैंने उसी चमत्कार का एक व्यक्ति के कमरे में देखा था, जिसने मेरे विचार से पर्याप्त विश्वसनीय सेवा कर ली थी, उसे जब आराम की जरूरत थी। उसकी पत्नी ने मुझे अपने घर उसके कमरे में ले गई। वहां वह साफ सुथरे बिस्तर पर पीठ से लेटा हुआ था। उसने प्रेस की हुई कमीज, टाई और नए जूते पहने थे। वह मेरी आंखों के आश्चर्य के भाव से देखता, हल्के से हंसा और समझाया, जब तुम मुझे आशीर्वाद दोगे तब मैं खाट उठाकर चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैंने देखा, देख सकता कि स्वामी के साथ साक्षात्कार के लिए तैयार था, जिसके लिए उसने इतने विश्वास से काम किया था। वह पूर्ण रूप से परिवर्तित अनंत अंतिम दिनों के संत का उदाहरण था, जिसने अक्सर में अपने समर्पित सेवा का जीवन देने के बदले के बाद मिलता हूँ। वे आगे बढ़ जाते हैं। वह जो पूर्णतः रूप से परिवर्तित होते हैं, उनमें यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रतिकूल किसी भी बात की इच्छा वास्तव में मर जाती है। वह पक्का निश्चय है जो अक्सर उन यीशु मसीह के अनुभवी विषयों में अधिक होता है। उन्होंने उनकी आज्ञा का अंत तक अनुसरण किया था। आप सबों ने इसे देखा है। आप इसे दोबारा देख सकते हैं जब आप बुक ऑफ मॉर्मन की पुस्तक पढ़ते हैं, क्योंकि इस समय भी तुम से बोलने के प्रयत्न में मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, लेकिन प्रभु परमेश्वर मुझे सहारा देते हैं और तुमसे बोलने की जिम्मेदारी देते हैं। वह अपने सेवकाई में अकेले ही था। वह जानता था कि उसके लिए जीवन का अंत निकट था। वह फिर भी उसने वह सब सुना जो उसने अपने नश्वर शत्रुओं के वंशजों और उन लोगों के लिए लिखा था जो पैदा भी नहीं हुए थे। तुम पूर्ण बनोगे। मरोना ने गवाही दी अपने जीवन को सेवकाई के विदाई भाषण के रूप में दी थी। जब उसने अपनी मृत्यु को निकट देखा, तो उसने उधारकर्ता की अपनी गवाही को बढ़ाया था। वह परमेश्वर का सच्चा पर्वतित था, जितने हम हो सकते हैं। उधारकर्ता और सुसमाचार के स्थिर निडर मरोनाय ने सिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। मॉर्मन की पुस्तक का प्रार्थना पूर्ण अध्ययन पिता परमेश्वर उसके प्रिय पुत्र सुसमाचार निमंत्रण करेगा। यह किसी अन्य पुस्तक के मुकाबले परमेश्वर के अधिक निकट ले जाती है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इसका अध्ययन करें। कई साल बीत गए। वह संसार में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था। उसे गवाही ने उसका जीवन बदल दिया था। उसने अपने सबसे प्रिय सपने भी अधिक खुशी मिली थी। हो सकता है अपनी मॉर्मन की पुस्तक के प्रति का अध्ययन करने के लिए आप प्रतिदिन के कामकाज से समय से नहीं निकाल पाते। इसमें यीशु मसीह के सुसमाचार की पूर्णता है, जो कि परमेश्वर के पास वापस जाने का एकमात्र मार्ग है। मैं आपको अपने निश्चय गवाही देता हूँ कि परमेश्वर जीवित हैं और उनके प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं। मॉर्मन की पुस्तक सच्ची और निश्चित गवाही है कि वह जीवित है और कि हमारा पूर्ण रूप और जीवित उद्धार करता है। मॉर्मन की पुस्तक यीशु मसीह की एक भूल है। यीशु मसीह के पवित्र नाम है। आमेन।
on this Sabbath morning.
इस सप्ताह की सुबह हम अपने उत्तरकर्ता की जीवित सच्चाई का धन्यवाद और गवाही देते हैं उसका सुसमाचार भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ द्वारा पुनः स्थापित किया गया है मर्मन की पुस्तक सच्ची है वर्तमान में हमारे नेतृत्व जीवित भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मानसन द्वारा होता है सबसे बढ़कर हम यीशु मसीह के प्रायश्चित और अनंत आशीष हैं जो इससे मिलती है की पवित्र गवाही देती है पिछले कुछ महीने के दौरान मुझे हमारे उद्धारकर्ता के प्रायश्चित बलिदान और कैसे उसने हम सब के प्रति अपने आप को इस अनंत भेंट के लिए तैयार किया था के विषय में अध्ययन करने और अधिक सिखाने का मौका मिलती है उसकी तैयारी नौसौर पूर्व जीवन से शुरू हुई थी जब उसने पिता से कहा था आपकी इच्छा पूरी होगी और महिमा हमेशा आपकी होगी उस क्षण से लेकर और आज तक वह आपने चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग हमारे स्वर्गीय पिता की योजना को स्वीकार और पूरा करने के लिए कर रहा है धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं कि अपने बचपन से वह अपने पिता के कार्य करने लगा और उसने अपनी सेवा कार्य का समय आने तक उसने प्रभु पर आशा रखा 30 वर्ष की आयु में उसने घोर लालच का सामना किया फिर भी यह कहकर प्रतिरोध करने का चुनाव किया हे शैतान मेरे सामने से दूर चला जा गतस्मनी में उसने यह घोषणा कर अपने पिता पर भरोसा किया मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो फिर उसने हमारे पापों के कष्ट को सहने के लिए आपने चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग किया मुकदमे में सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाना और सलीब का यातना सहना सहर्ष स्वीकार करते हुए हमारे पापों के लिए घायल होने और हमारी गलतियों के लिए चोट खाने के लिए उसने अपने पिता पर आशा रखा अपने शत्रुओं को क्षमा करने के लिए अपने चुनने की स्वतंत्रता को उपयोग करते समय उसने अपने पिता पर आशा रखा अपनी माँ को ख्याल रखा और तंक और अंत तक सहनशील बना रहा जब तक कि उसका जीवन और नश्वर मिशन पूरा नहीं हो गया मैंने अक्सर विचार किया है ऐसा क्यों है कि परमेश्वर का पुत्र और उसके पवित्र भविष्यवक्ता और सभी विश्वसनीय संत परीक्षाओं और परेशानियों के सामना करते हैं वह भी तब जबकि वो स्वर्गीय पिता की इच्छा की पूरा करने की कोशिश करते हैं विशेषकर उनके लिए यह इतना कठिन क्यों होता है मैं जोसेफ स्मिथ के बारे में सोचता हूँ जिसने बालक के रूप में रोग और पूरे जीवन पर अत्याचार सहा था उद्धारकर्ता की तरह वह पुकार उठा था ओ परमेश्वर तुम कहाँ हो फिर भी जबकि वह अकेला प्रतीत होता था प्रभु का आसरा रखते हुए उसने अपनी चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग किया और स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया मैं हमारे पथ प्रदर्शक पूर्वजों के बारे में सोचता हूँ जिन्होंने भविष्यवक्ता के पीछे चलने के लिए अपनी चुनने की स्वतंत्रता का उपयोग किया नाबू से खेदरे गए और मैदानों के पार किया फिर भी उन्होंने बीमारी बदहाली और कुछ ने मृत्यु का सामना किया इतनी भयंकर पीड़ा क्यों कब था किस उद्देश्य के लिए जब हम ये प्रश्न पूछते हैं हम महसूस करते हैं कि पृथ्वी पर हमारे जीवन का उद्देश्य अपने स्वयं के अनुभवों को के द्वारा बढ़ना विकास करना और मजबूत होना है हम इसे कैसे करते हैं धर्मशास्त्र इसका उत्तर हमें एक सरल वाक्य में देते हैं हम प्रभु पर आशा रखते हैं परीक्षाएं और परेशानियां हम सभी को मिलती है ये नश्वर चुनौतियां हमें और हमारे स्वर्गीय पिता को जांचने का मौका देती है कि हम उसके पुत्र को पीछे चलने के लिए अपनी चुनने की स्वतंत्रता को उपयोग करते हैं वह पहले से ही जानता है और हमारे पास सीखने का मौका है कि चाहे हमारे परिस्थितियों कितनी कठिन क्यों न हो ये सभी बातें हमारे अनुभव और हमारे भलाई के लिए है क्या इसका अर्थ यह है कि हम हमेशा अपनी चुनौतियों को समझेंगे? क्या हम सभी के पास कभी कभी यह पूछने का कारण नहीं होता है, ओ परमेश्वर आप कहाँ हो? हाँ, जब पति या पत्नी की मृत्यु होती है, साथी को संदेह होता है, जब आर्थिक कठिनाई या परिवार पर आती है, पिता पूछते हैं, जब बच्चे मार्ग से भटक जाती है, माँ और बाप दुखी होकर पुकारते हैं, हाँ रात पर रोना हो सकता है लेकिन सुबह खुशी मिलती है। तब सुबह बड़े विश्वास और समझ के साथ हम खड़े होते हैं और यह कहते हुए प्रभु पर आशा रखने का चुनाव करता है, आपकी इच्छा पूरा होगी। प्रभु पर आशा रखने का अर्थ क्या है? धर्मशास्त्र में शब्द आशा का अर्थ है आशा करना, उम्मीद करना और भरोसा रखना। प्रभु पर आशा और भरोसा रखने के लिए विश्वास, धैर्य, दीनता, विनम्रता, लंबे समय तक कष्ट सहना, आज्ञाओं का पालन करने और अंत तक धीरज धरने की जरूरत होती है। प्रभु पर आशा रखना के अर्थ है विश्वास का बीज बोना और बहुत परिश्रम और धैर्य से इसका पोषण देना। इसका अर्थ है आपने स्वर्गीय पिता से यह कहते हुए प्रार्थना करना जैसे उत्तरकर्ता ने की थी, अपना राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। यह प्रार्थना हम अपनी संपूर्ण आत्मा से अपने उत्तरकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु पर आशा रखने का अर्थ है आपने हृदय में मनन करना और पवित्र आत्मा पाना, ताकि हम वह सब जान सकें जो हमें करना चाहिए। जब हम आत्मा के कहे अनुसार चलते हैं, हम पाते हैं कि पीड़ा से धैर्य उत्पन्न होता और हम निरंतर धैर्य रखना सीखते जब तक कि हम निपुण नहीं हो जाते। प्रभु पर आशा रखने का अर्थ है डटे रहना और आशा की परिपूर्ण चमक के साथ विश्वास में आगे बढ़ते रहना। इसके अर्थ है केवल मसीह के गुणों पर भरोसा रखना और उसकी अनुग्रह की मदद से यह कहना, ओ प्रभु आपकी इच्छा पूरी होगी हमारे नहीं। जब हम प्रभु पर आशा रखता है, हम यह जानते हुए आज्ञाओं की पालन करने में अटल रहते हैं कि हम एक दिन हमें सब कष्टों से छुटकारा मिलेगा, और हम अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ते हैं कि जो बातें हमें पीड़ा देती हैं मिलकर हमें हमारी भलाई के लिए काम करती हैं। ये पीड़ाएं सभी तरह की आती हैं। अय्यूब का अनुभव हमें याद दिलाता है कि अंत तक धीरज धरने का अर्थ क्या अर्थ होता है। अय्यूब ने जमीन, घर और जानवरों सहित सारी संपत्ति खो दी थी। उसके परिवार के सदस्य, उसकी इज्जत, उसका स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उसका मानसिक सुख भी। फिर भी उसने प्रभु पर आशा रखा और शक्तिशाली व्यक्तिगत गवाही दी थी। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगी। और यद्यपि यह शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर भी मेरे शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। चाहे वह मुझे पर मार डाले, फिर भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अय्यूब भविष्यवक्ताओं और उद्धारकर्ता के शानदार उदाहरणों के होते हुए भी हमें प्रभु पर आशा रखना कठिन लगता है, विशेषकर जब हम पूरी सतर्क से उसकी योजना और उद्देश्य को नहीं समझते हैं। यह समझ बहुत बार नियम पर नियम, उपदेश पर उपदेश द्वारा मिलती है। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि हमें कभी कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि हम तैयार नहीं हैं। जब वह उत्तर देता है तो यह अक्सर थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ के रूप में मिलते हैं, क्योंकि मैं उतना ही ग्रहण कर सकता हूँ या मैं करना चाहता हूँ। बहुत बार हम धैर्य के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम इसे तुरंत चाहते हैं। युवा के रूप में मैं अध्यक्ष डेविड ओ मक्के ने सुसमाचार की सच्चाई की गवाही के लिए प्रार्थना की थी। कई साल बाद जब वो होस्करलैंड मिशन में सेवा कर रहे थे, वह गवाही उन्हें मिली थी। उन्होंने बाद में लिखा था, यह मेरे लिए आश्वासन था कि सच्ची प्रार्थना का उत्तर कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर मिलता है। हमें नहीं जानते प्रभु के उत्तर कब यहाँ या कहाँ मिलेंगे, लेकिन उसके समय में और उसकी तरीके से उत्तर मिलेंगे। कुछ उत्तर के लिए हमें यहाँ के बाद भी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यह बात हमारी कुलपति की आशीष के कुछ बातों और परिवार के सदस्य के लिए कुछ आशीषों के साथ ही साथ हो सकती है। हम प्रभु पर भरोसा कायम रखें। उसकी आशीषें स्थायी है, अस्थायी नहीं है। प्रभु पर आशा रखने से हमें यह जानने का अनमोल मौका मिलता है कि बहुत से लोग हम पर आशा रखते हैं। हमारे बच्चे धैर्य, प्रेम और उनके प्रति समझ दिखाने के लिए हम पर आशा रखते हैं। हमारे पास माता पिता आभार प्रकट करने और उसका उनका ख्याल रखने के लिए हम पर आशा रखते हैं। हमारे भाई और बहन सहनशील होने, दयावान होने और क्षमा करने के लिए हम पर आशा रखते हैं। जैसा उदारकर्ता ने हमें से हर एक के साथ प्रेम किया था, उसी प्रकार हमारे पति या पत्नी उन्हें प्रेम करने के लिए हम पर आशा रखते हैं। जब हम शारीरिक कष्टों को सहते हैं, जब बहुत आयत से जानते हैं कि कितने लोग हम में से हर एक पर आशा रखते हैं। सभी मरियम और मार्था से, सभी अच्छे सामरी से जो बीमारी को सेवा करते, कमजोर को राहत देते और मानसिक और शारीरिक अयोग्य व्यक्तियों की देखभाल करते हैं। मैं प्रेमी स्वर्गीय पिता और उसके प्रिय बेटे के आभार को महसूस करता हूँ। आपकी प्रतिदिन की समस्या के सामने सेवा में आप प्रभु पर आशा रखते हैं और स्वर्गीय पिता की इच्छा को करते हैं। आपके लिए उसका आश्वासन स्पष्ट है कि तुमने जो इन मेरे छोटे से छोटे भाइयों के किसी एक साथ किया है, वो मेरे साथ किया है। वह आपके बलिदानों और आपके दुखों को जानते हैं। वह आपकी प्रार्थनाओं के सुनता है। जब विश्वास के साथ आप उस पर आशा रखते हैं, उसकी शांति और विश्राम आपको होगा। हमें से प्रत्येक प्रभु को उसे बहुत अधिक प्रिय है, जितना कि हम संभवतः समझ या कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हम एक दूसरे की प्रतिदिया दिखाए और आपने आपको प्रतिदिया दया दिखाए। हम याद रखें कि हम प्रभु पर आशा रखते हैं। हम उसके प्रायश्चित समर्पण, विनम्रता, दीनता, प्रेम की परिपूर्णता, सब कुछ प्रभु को समर्पित करने जैसा बच्चा पिता पर समर्पित रहता है के द्वारा संत बन रहे हैं। आपने पिता के लिए उदारकर्ता का इस प्रकार का समर्पण गतस्मनि के बाग में था। उसने आपने शिष्यों से कहा था, मेरे साथ जागते रहना। फिर भी उसने 3 बार लौटकर उन्हें नींद से भारी आंखों में पाया। आपने इन शिष्यों के साथ के बिना और अंततः आपने पिता की उपस्थिति के बिना उदारकर्ता ने हमारे दुखों और पीड़ाओं और हर प्रकार के लालच को सहने का चुनाव किया। उसे हिम्मत देने के लिए वे स्वर्गदूत के साथ वह खड़वे प्याले की पीने पीछे नहीं हटा। उसने यह कहकर आपने पिता पर आशा रखा, आपकी इच्छा पूरी हो। वह दिन था में अकेले ही कुचला गया था। अब अंतिम दिनों में उसकी 12 प्रेरितों से एक रूप में मैं प्रार्थना करता हूँ। हमें हर दिन उसके साथ जागने और उस पर आशा रखने की मजबूती मिलेगी। आज सब्बात की सुबह मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपनी और आपकी कतस्मनी में हम अकेले नहीं है, वह जो हम सबों की ख्याल रखता है, वह न तो ऊँघता है नहीं सोता है। उसकी स्वर्गदूत यहाँ और पर्दे की उस पार हमारे आसपास रहते हैं, हमें उठाए रहते हैं। मैं अपनी विशेष गवाही देता हूँ कि उसका वादा सच्चा है। जो प्रभु पर आशा रखता है वो नई शक्ति पाएंगे, वो उकाब की तरह उड़ेंगे और दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, और वो पैदल चलेंगे और निर्बल न होंगे। खास हम विश्वास में इतना आगे बढ़ता जाए कि हम प्रार्थना में कहें, आपकी इच्छा पूरी होगी, और सम्मान के साथ उसके पास वापस लौटे। हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।
Years ago, my
कई साल पहले मेरे परदादा ने मोमन की किताब पहली बार उठाई। उसने किताब बीच में खोली और कुछ पन्ने पढ़े। फिर उसने कहा, ये किताब या तो परमेश्वर ने लिखी है या शैतान ने, मैं पता करूंगा किसने। अगले 10 दिनों में उसने वो किताब पूरी 10 बार पढ़ी और फिर कहा, ये शैतान ने निश्चित नहीं लिखी है, परमेश्वर ने ही लिखी होगी। मोमन की किताब प्रभावशाली है, बीच डिगबगाने की जगह नहीं है। या तो वो परमेश्वर का शब्द है या एक फरेब है। ये किताब सिर्फ नैतिक प्रवचन, आध्यात्मिक विवरण या विवेकी बोलों का संग्रह होने का दावा नहीं करती, पर ईश्वर का हर बोल का हर वाक्य खंड और पन्ना। जोसेफ स्मिथ ने घोषित किया, परमेश्वर के दूत ने उसे सुनहरे पत्ते दिलवाए जिनमें अमरीकी प्राचीन नबियों के लेख थे। उनसे उनका अनुवाद दिव्य शक्ति से किया। अगर कहानी सच्ची है, मोमन की किताब पवित्र ग्रंथ है जैसे उसने दावा किया है। अगर नहीं तो वह एक विवेकी परदृष्ट धोखा है। C.S. लुईस ने ऐसी ही उलझन के बारे में बताया, जब किसी ने को मसीहा की दिव्यता माननी या नकारनी थी, बीज डगमगाने की जगह नहीं थी। मैं कैसी कि उस भूल से बचाना चाहता हूँ जो कुछ लोग उसके बारे में करते हैं। मैं ईसा को नैतिक गुरु मानते हैं तैयार हूँ, पर उसका भगवान होने का दावा नहीं। ऐसे हमें नहीं कहना चाहिए। अगर वो केवल इंसान होता और उस जैसी बातें करता, वो अच्छा नैतिक गुरु नहीं होता। तुम्हें चुनाव करना ही पड़ेगा, या तो वो आदमी परमेश्वर का बेटा है या एक पागल या उससे बुरा। हमें ऐसी बकवास से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नैतिक गुरु था। ये अर्थ हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसा उसका इरादा ही नहीं था। वैसे ही हमें मोमन की किताब के बारे में चुनाव करना पड़ेगा, या तो वो परमेश्वर का है या शैतान का, कोई और चारा नहीं है। मैं तुम्हें परीक्षा देता हूँ इस किताब की सही रूप परखने में सहायता देने। खुद से पूछो कि किताब के ये लेख तुम्हें परमेश्वर की कवि बुलाते हैं या शैतान के। मसीहा ने के बोलों पर भोज करो, देखो उसके बोल तुम्हें सभी बातें सिखाएंगे जो तुम्हें करनी चाहिए। एक प्यारे बेटे की यह सलाह, अब देखो बेटे, याद रखो कि हमारे मुक्ति वक्ता की चट्टान पर जो मसीहा है, परमेश्वर का बेटा, तुम्हें अपनी नींव बनानी चाहिए। या एक पैगंबर के ये बोल, मसीहा के पास आओ और उसमें सिद्ध बन जाओ। क्या ये मुमकिन है कि मोमन की किताब के ये बोल शैतान ने लिखवाए हैं? मसीहा ने कुछ शैतानों के को भगाने के बाद फरीसियों ने कहा था कि वो अंधेरे के राजकुमार के द्वारा उन्हें भगाया है। मसीहा ने जवाब दिया था, ये बकवास है। अगर किसी राज्य में फूट है तो वो उजड़ जाता है। कोई घर जिसमें फूट होती है वो बना नहीं रहता। फिर उसने कहा, और यदि शैतान ही शैतान को भगाए तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? मोमन की किताब कि ये छंद हमें मसीह की आराधना, प्यार और सेवा करने सिखाते हैं। ये शैतान के कैसे हो सकते हैं? अगर होते तो वो खुद विरोधी होता खुद को नष्ट करता। ऐसी स्थिति उद्धारकर्ता ने कहा है नहीं हो सकती। कोई पक्ष लेने लिए बिना अगर कोई मोमन की किताब का सच्चा अध्ययन करेगा, वो भी उस निर्णय पर पूछेगा जो मेरे परदाता पहुंचे थे कि वो ईश्वर की ओर से ही है। बाइबल ईसा मसीह की एक गवाह है, मोमन की किताब दूसरी। ये दूसरी गवाह जरूरी क्यों है? ये चित्रण शायद समझने में मदद करे। हर एक कागज पर एक बिंदु की कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं? जवाब है अनगिनत। एक क्षण के लिए मान लो वो बिंदु बाइबल है और उस बिंदु में खींची जाने सकड़ी सीधी रेखाएं बाइबल की अलग अलग व्याख्याएं हैं और हर व्याख्या अलग अलग गिरजा दर्शाती है। क्या होगा अगर कोई कागज पर दूसरा बिंदु हो जो मोमन की किताब दर्शाता है? अब तुम कितनी सीधी रेखाएं खींच पाओगे उन दोनों बिंदुओं के बीच, बाइबल और बुक ऑफ मोमन के बीच? सिर्फ एक मसीह के सिद्धांतों की केवल एक व्याख्या बचती है इन दोनों गवाहों के बयान के बाद। बार बार मोमन की किताब बाइबल ने सिखाए सिद्धांतों की पुष्टि स्पष्ट और एक करने वाली गवाह बनती है, ताकि सिर्फ एक प्रभु का एक विश्वास और एक बपतिस्मा बचे। उदाहरण, कई लोग बपतिस्मे की जरूरत के बारे में उलझन में हैं, हालांकि निकोदेमुस को कहा गया था जल और आत्मा में जन्म बगैर मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मोमन की किताब इसके बारे में सब संदेह मिटाती है। वो सभी मनुष्यों को पछता कर बपतिस्मा लेने का आज्ञा देती है। इसके बगैर वो परमेश्वर के राज्य में बचाए नहीं जा सकते। आज संसार में कई प्रकार के बपतिस्मे हैं, जबकि बाइबल मसीह के बपतिस्मे की रीति के बारे में बताता है। वो हमारा उदाहरण है। मत्ती बताता है वह तुरंत पानी के ऊपर आया। क्यों? क्या वो पानी के बाहर निकलता अगर वो पहले पानी में के अंदर न गया होता? अगर फिर भी इस विषय पर कोई संदेह है, तो मोमन की किताब बपतिस्मे की रीति के बारे में संदेह दूर करती है और फिर तुम्हें उन्हें पानी में डुबा दोगे। कई विश्वास करते हैं कि प्रकटीकरण बाइबल के साथ समाप्त हुआ, हालांकि बाइबल 4000 साल की गवाही है परमेश्वर के प्रकटीकरण की। इस जैसा एक गलत सिद्धांत एक श्रृंखला शुरू करता है जिससे सही सिद्धांत भी टुकराए जाते हैं। प्रकटीकरण की समाप्ति में विश्वास रखने से परमेश्वर कल आज और सदा एक समान है, ये सिद्धांत मिट जाता है। आमोस 3:7 में सिखाया ये सिद्धांत मिटाया जाता है। वाकई प्रभु परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, उसके रहस्य सेवक पैगंबरों को बताए। प्रेरितों 10:35 में सिखाया है परमेश्वर पक्ष नहीं लेता। क्या फिर वो हर युग में मनुष्य से बात नहीं करेगा? सौभाग्य से मोमन की किताब बाइबल की निरंतर प्रकटीकरण की सच्चाई यूं सिखाती है कि फिर परमेश्वर की प्रकटीकरण ठुकराने वालों से कहता हूं जो कहते हैं कि वो समाप्त हुए हैं और जावी नहीं है, क्या हम नहीं पढ़ते कि परमेश्वर कल आज और कल एक समान है? अगर परमेश्वर जो बदलता नहीं, जो प्राचीन काल में बात की, तो वो आज भी करेगा। सिद्धांतों की पुष्टि और स्पष्टीकरण की श्रेणी लंबी है, पर कोई भी इतनी शक्तिशाली या प्रभावशाली नहीं जितनी मोमन की किताब की क्षतिपूर्ति पर के प्रवचन। क्या तुम अपने दिल पर वो निश्चित गवाह की पुष्टि करना चाहते हो कि मसीह सभी पापों के नीचे झुका, कि ऐसे कोई पाप या दुविधा नहीं है जो उसकी क्षतिपूर्ति की करुणा के परे है, कि तुम्हारे हर कष्ट के लिए उसके पास मरहम है? तो मोमन की किताब पढ़ो, वो तुम्हें सिखाएगी और बयान देगी कि मसीह की क्षतिपूर्ति अपरंपार है, क्योंकि मनुष्य को पता सभी नश्वर दुर्बलताओं वो समेट लेती है। इसलिए पैगंबर मोमन ने कहा, तुम मसीह की क्षतिपूर्ति के द्वारा आशा पाओगे। मोमन की किताब दृढ़ता से दावा करती है कि अगर तुम मसीह में विश्वास करोगे, तुम इन बातों पर भी विश्वास करोगे, क्योंकि ये मसीह की वाणी है। बाइबल के साथ मोमन की किताब एक अनिवार्य गवाह है मसीह के सिद्धांतों और दिव्यता की। दोनों मिलके हमें एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मे पर लाते हैं। इसलिए मोमन की किताब हमारे लिए जीवन में के लिए अनिवार्य है। कुछ साल पहले मैं टोरंटो कनाडा में हमारी एक सभा में था। एक 14 साल की लड़की वक्ता थी। उसने वहां कहा, विद्यालय में वह अपने एक मित्र से धर्म पर चर्चा कर रही थी। मित्र ने पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? उसने कहा, वह ईसा मसीह का गिरजा, आखिरी दिनों के संतों का, या मॉर्मन। मित्र ने कहा, मैं उस गिरजे को जानती हूँ, वह सच्चा नहीं है। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? मित्र ने कहा, मैंने जांच की है। उसने पूछा, क्या तुमने मॉर्मन की किताब पढ़ी है? जवाब मिला, नहीं। बालिका ने जवाब दिया, फिर तुमने गिरजे की जांच नहीं की है? मैंने उसका हर पन्ना पढ़ा और उसकी सच्चाई जानती हूँ। मैंने भी मोमन किताब की हर पन्ना बार बार पढ़ा है और अपने परदादा के समान बयान देता हूँ, वो परमेश्वर से है। ईसा मसीह के नाम से आमेन।
क्वायर और मंडली, वी थैंक यू गॉड फॉर प्रॉफिट, साथ में गाएंगे। गाने के बाद हम सुनेंगे यंग वुमेन जनरल प्रेसिडेंट सिस्टर एलेन एस डॉल्टन से। उनके बाद कोरम ऑफ द 12 अपोस्टल्स के एल्डर एम रसल बैलर्ड होंगे। क्वायर फिर गाएगी, आई गो वेयर यू वांट मी टू गो।
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
181 अर्धवार्षिक जनरल कॉन्फ्रेंस है इस चर्च के जनरल।
No words describe the sacred occasion.
जब एक पिता एक नवजात बेटी को अपने बाहों में पहली बार लेता है, उस पवित्र अवसर का वर्णन करना कठिन है. इस साल हमारे तीनों बेटे बेटियों के नए पिता बने हैं. जब मैंने अपने पुत्र जॉन को उसकी पहली बेटी के उसके को उसको बाहों में देखी रही थी, उसने उसे पकड़ा और तब उसे मुझे भाव के साथ देखा, मानो जैसे कह रहा था, मैं एक लड़की का पालन पोषण कैसे करूं? इस सुबह मैं अपने बेटों से बात करना चाहती हूं. कैसे एक पिता बेटी को आज बढ़ती हुई जहरीले संसार में पाल सकता है? यह साधारण जवाब है और यह सत्य है. पिता सबसे महत्वपूर्ण काम कर सकता है अपनी बेटी के लिए उसके माँ से प्रेम करके. ऐसे ही आप अपनी बेटी को कोमलता, निष्ठा, आदर, करुणा और उपासना के बारे में सिखाएंगे. वह आपके उदाहरण से सीखेगी कि नव युवक से क्या उम्मीद करें और भावी पति से क्या गुण हो. अपनी पत्नी से प्रेम और आदर करके आप अपने बेटी को दिखा सकते हैं कि वह शादी उससे करे जो उसे प्रेम और आदर करने वाला हो. आपका उदाहरण आपकी बेटी को औरत होने का मूल्य सिखाएगा. आप उसे दिखाएंगे कि हमारे स्वर्गीय पिता की एक बेटी है जो उससे प्रेम करते हैं. एक टेंपल मैरिज समय और अंतता के लिए आपकी कड़ी मेहनत को योग्य है. नफी ने मंदिर पूरा करने के बाद कहा, और तब हम आनंद पूर्वक रहने लगे. यह मंदिर में ही पाया जा सकता है. किसी भी तरह के प्रभाव को अपने जीवन में, अपने घर में आने न दे जो कि अपने अनुबंधों से या अपनी पत्नी और परिवार से प्रतिज्ञा को समझौता करने वाला कारण बने. यंग वुमन में हम अपने आपके बेटियों को परमेश्वर की एक बेटी होने का पहचान सिखाते हैं. हम उन्हें सिखाते हैं कि मंदिर में विवाह की योग्यता क्या महत्व है. हम उसे सिखाते हैं कि वह कुछ भी उसे मंदिर में जाने से रोक न सके. हमारे बोलने से ज्यादा पिता के रूप में आपका उदाहरण अधिक प्रभावशाली होता है. बहुतों की महान कामना होती है कि वे एक साथ अपने परिवार के साथ अनंत में हो. वे आपको वहां देखना चाहती हैं और जब वे मंदिर जाएं या मंदिर में शादी करें. जब वह 12 साल की हो जाए, उसे अपने साथ अवसर मंदिर में ले जाकर पुरखा और दूसरों के लिए बपतिस्मा करने दें. वे इन यादों को सदा के लिए रखेंगी. आज की प्रसिद्ध संस्कृति आपके अनंत भूमिका को अर्थहीन और धीरे धीरे से नष्ट कर देती है. यह आपको पवित्र नमूना के द्वारा दिया गया है और आप पिता के रूप में अपने परिवारों को प्रेम और योग्यता और जीवन की जरूरतों का प्रदान कराना और परिवारों की सुरक्षा करने का नेतृत्व करना. पिताओं, आप अपने घरों, अपनी पत्नियों और अपने बच्चों के संरक्षण हैं. आजकल यह आसान बात नहीं है कि एक परिवार के विरुद्ध दिमागों और आत्माओं के भीतर बुराई और घुसने के बचा पाए और प्रभाव बिना किसी रुकावट के घरों के भीतर घुस सके. शैतान बहुत चतुर है. पिताओं, आप सदाचारी अभिभावक जरूर होंगे. सदाचारी व्यवहार दर्शाता है कि अपने विचार शुद्ध और साफ हैं. सदाचारी ईश्वरत यह पवित्रता का सम्मान है. आपके जीवन में कुछ भी जो बुरा है उसे बाहर निकालना. तो सावधान रहें कि आप मनोरंजन के लिए क्या देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं. आपका व्यक्तिगत सदाचार आपकी बेटियों के लिए भी सच्ची या शक्ति और मलिक उत्साह है. अपने जीवन में आप एक सदाचारी अभिभावक होना अपने घरों में और अपने बच्चों के जीवनों में. अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को दिखाएंगे कि यह सच्चा ईमानदार प्रेम है। आपकी अपनी व्यक्तिगत शुद्धता आपको शक्ति देगी। आपके जीवन में कुछ भी जो बुरा है उसे बाहर निकालना, जो उस परमेश्वर की पवित्र पौरोहित्य को परस्पर पकड़ता रहती है। अपने जीवन में आप सदाचारी अभिभावक होना। उससे बात करें, उससे दोस्ती को, उसके दोस्तों को, और जब समय हो उसके प्रेमी को जानें। शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए मदद करें। संगीत और मनोरंजन को चुनने में, आत्मा को आमंत्रित करने में और पवित्र पहचान बनाए रखने में उसकी मदद करें। उसके जीवन का हिस्सा बना रहें। और यदि उसे युवावस्था के वर्षों में वे भेंट से बाद समय में घर न आए, जाकर उसे लाएं। वह विरोध करेगी, परंतु वह दिल ही दिल में जानेगी कि आप उससे प्रेम करते हैं। आप आम आदमी नहीं हैं, क्योंकि आप पूर्व जीवन के कार्यक्षेत्र में पराक्रमी थे। आप मार्गदर्शक होने में के अनुकाल और पौरोहित्य शक्ति के मालिक होंगे, जहां पर आप अत्यधिक विश्वास और अच्छे कार्य करेंगे। कुछ सप्ताह में हमारे तीनों बेटे अपने बेटियों का नामकरण और आशीष देंगे। मैं आशा करती हूँ कि अन्य कई पौरोहित्य आशीष में पहले होंगे, जिसे वे अपने पिता से प्राप्त करेंगे, क्योंकि जिस संसार में वे बड़ी होंगी वहाँ पर इन आशीषों की जरूरत होगी। हमेशा याद रखें कि पौरोहित्य का अधिकार स्वर्ग में शक्ति के साथ जोड़ा होता है, और सिर्फ योग्यता के नियमों के साथ नियंत्रण किया सकता है। पिताओं, आप अपनी बेटियों की हीरो हैं। मेरा पिता मेरे हीरो थे। मैं अपने घर के सिरों पर रोज रात बैठकर उनके काम के घर से घर लौटने की इंतजार करती थी। वे मुझे उठाते घुमाते और अपने पैरों पे अपने बड़ों से जूतों के ऊपर रखकर वे मेरे साथ घर में नाचते थे। वे मुझे उनके हर पथ चिन्हों के चलने की कोशिश करती थी। मैं अभी भी करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपकी गवाही आपकी बेटियों पर गहरा प्रभाव डालती है? मैं जानती हूँ कि मेरे पिता प्रभु से प्रेम करते थे, और इसलिए मैं भी करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वे विभाव के ध्यान रखते थे, क्योंकि उन्होंने अपने काम से छुट्टी लेकर हमारी पड़ोसिन का घर रंगाया। आप अपनी बेटी से जीवन को आशीषित आने वाले वर्षों के लिए करेंगे, यदि आप उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए रास्ता देखेंगे और अपने गवाही के साथ बैठेंगे। बुक ऑफ मॉर्मन में एबिश के पिता के अद्भुत दर्शन के साथ बांटने परिवर्तित हुई थी। बहुत सालों के लिए उसने अपने दिल में रखा। तब समय आया कि वह शांत न रह सकी, और वह घर घर जाकर अपने गवाही बांटने लगी। अबिश की शक्ति के परिवर्तन का गवाही एक पूरे समाज के बदलाव का सहायक बनी थी। जिन लोगों ने उसकी साक्षी को सुना था, वे लोग प्रभु में परिवर्तन हो गए और कभी अलग न हुए, और उनके पुत्र सहस्त्र योद्धा बन गए थे। जैसे गीत कहता है, उठो हे परमेश्वर के पुरुषों, शायद वह आपके बारे में भी कहा जाएगा, जैसे कप्तान मरोनी के बारे में कहा गया था। वे एक शक्तिशाली आदमी थे, वे अति तीक्ष्ण बुद्धि के थे, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका विश्वास मसीह में था, कि अगर अतीत और वर्तमान में सभी लोग मरोनी जैसे होते और भविष्य में उसी की तरह लोग होंगे, तब अधोलिक का शक्ति की सदैव सदैव के लिए नष्ट हो जाएगा, कभी भी कोई अधिकार नहीं पाता। तो आप ऐसे एक बेटी का पालन पोषण कैसे करें? भाइयों, पिताओं, युवा पुरुष, अपने अंदर की वफादारी के लिए संरक्षित रहें, उसकी माँ के को प्रेम करें, मंदिर की ओर अपने परिवार का मार्गदर्शन करके वे सदाचारी के लिए चुनावी में मेरी प्रार्थना है, उनकी उन्हें शक्ति दें, भाव का उदाहरण करें और उनका अध्याकार करें। उसने वे जीते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful.
अपना प्यार देते हैं सबके लिए जो यहाँ पे हैं आज हैं। पिछले अप्रैल के सम्मेलन के बाद मेरा मन अक्सर नाम के महत्व पर केंद्रित हुआ है। इन पिछले महीनों में मेरे परिवार में कई पड़ पोते जुड़ गए हैं। लगता है वो मेरी काबिलियत से ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं। हर नए बच्चे का परिवार में स्वागत होता है। हर एक के लिए उनके माता पिता एक खास नाम चुनते हैं जिनसे उन्हें जीवन भर बुलाया जाएगा, हर दूसरे से अलग करने के लिए। ये हर एक परिवार में होता है, ये दुनिया के हर मजहब में भी होता है। प्रभु ईसा मसीह को उसके गिरजे को इन आखिरी दिनों में एक स्पष्ट नाम देने का महत्व पता था। सिद्धांत और करार के 115वें खंड में उसने खुद उसके गिरजे को नाम यूं दिया, इस अंतिम दिनों के मेरा गिरजा बुलाया जाएगा। वह ईसा मसीह का गिरजा अंतिम दिनों के संतों का। राजा बेंजामिन ने मोमन की पुस्तक के लोगों को सिखाया, मैं चाहता हूँ तुम खुद पर मसीह का नाम लो, तुम सभी जिन्होंने परमेश्वर का करार किया है कि तुम जीवन के अंत तक आज्ञा पालन करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें याद रहे कि यही वो नाम है जो मैंने कहा था मैं तुम्हें दूंगा, जो कभी मिटाया नहीं जा सकता उल्लंघन के अलावा। इसलिए ख्याल रहे कि तुम उल्लंघन नहीं करोगे ताकि वो नाम तुम्हारे दिलों से मिटाया ना जाए। ईसा मसीह का नाम खुद पर बपतिस्मे के पानी में हम लेते हैं। हम उस बपतिस्मे का असर हर हफ्ते परम प्रसाद लेने से दोहराते हैं। हम वादा करते हैं कि हम उसका नाम खुद पर लेकर उसे याद रखने तैयार हैं। क्या हम जानते हैं कितने हम धन्य हैं कि परमेश्वर के इकलौते बेटे का नाम हम खुद पर ले रहे हैं? उसका महत्व जानते हैं क्या? स्वर्ग के नीचे उद्धारकर्ता का एक ही नाम है जिससे हम मुक्त हो पाते हैं। तुम्हें याद होगा प्रधान बॉयड के पाकर ने पिछले अप्रैल के सम्मेलन में गिरजे के नाम का महत्व यूं सिखाया था, प्रकटीकरण की आज्ञा पालते हुए हम अपने आप को मोमन गिरजे के अलावा बुलाते हैं वह ईसा मसीह का गिरजा अंतिम दिनों के संतों का। गिरजे का नाम इतना महत्वपूर्ण है इसलिए मैं धर्मग्रंथों के प्रकटीकरण के और पहले प्रधानों के 1962 और 2001 के खत और धर्मदूतों की आवाज़ गूंजता हूँ। इन सभी ने गिरजे के सदस्यों को गिरजे के नाम की पुष्टि करने प्रोत्साहन दिया है कि वो प्रभु ईसा मसीह पर आधारित है। यहाँ वो नाम है जिससे प्रभु हमें अंतिम दिनों में पुकारेगा। ये वो नाम है जिससे उसका गिरजा हर दूसरे से अलग बताया जाएगा। मैंने बहुत सोचा कई कि उद्धारकर्ता ने उसके बहाल गिरजे को इतना लंबा नाम क्यों दिया। लंबा लगता है पर अगर हम उसे गिरजे के वर्णन का सार मानेंगे तो वो एक बढ़िया छोटा स्पष्ट और सरल लगता है। क्या कोई वर्णन इतना निर्देशक स्पष्ट और इतने कम शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाता? हर शब्द स्पष्ट और जरूरी है। वह ये शब्द बहाल गुर्जे का दुनिया के मजहबों में अनुपम स्थान व्यक्त करता है। ईसा मसीह का गिरजा बताता है कि ये उसका गिरजा है। मोमन की पुस्तक में ईसा ने सिखाया वो मेरा गिरजा कैसे हो सकता है अगर वो मेरे नाम से पुकारा न जाए। यदि वो मूसा या किसी आदमी के नाम पुकारा जाए जैसे मोमन, तो वो मूसा या उस आदमी का गिरजा है। अगर वो मेरे नाम से पुकारा जाए तो वो मेरा गिरजा है, अगर वो मेरे सुसमाचार पर आधारित हो। अंतिम दिनों बताता है कि वही गिरजा है जो ईसा मसीह ने अपने नश्वर जीवन में स्थापित किया था, जो अंतिम दिनों में बहाल हुआ है। हम जानते हैं वो भटक गया था और अब उसका पूरा और सच्चा गिरजा बहाल करना पड़ा है। संत मतलब उसके सदस्य उसका अनुसरण करके उसकी मर्जी और आज्ञा पालने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसके और स्वर्गीय पिता के सामने पहुंच पाए। संत मतलब वो जीवन पवित्र बनाना चाहते हैं मसीह का अनुसरण करके। मसीह ने गिरजों को दिया नाम बताता है हम कौन हैं और क्या विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं ईसा मसीह हमारा उद्धारकर्ता और सभी मनुष्य जाति का मुक्तिदाता है, जिसके पापों का पश्चाताप करने वालों को क्षतिपूर्ति की है, मृत्यु का बंधन तोड़ा और पुनरुत्थान मुमकिन किया। हम ईसा मसीह को मानते हैं। मैं तुम्हें राजा बेंजामिन की तरह कहता हूँ, तुम्हें याद कर रख कर उसका नाम अपने दिलों में लिखा रखना चाहिए। हमें उसकी गवाह के रूप में हर समय और हर जगह और सभी बातों में रहना चाहिए, मतलब हम दूसरों को बताने की तैयारी होनी चाहिए कि हम किसे मानते हैं और किस गिरजे के सदस्य हैं। ईसा मसीह के गिरजा के हमें यह प्यार और आदर के रवैये से करना चाहिए। हमें उद्धारकर्ता को विनयपूर्वक रूप में मानना चाहिए, घोषणा करते हुए कि हम उसके गिरजे के सदस्य हैं। हम पालन करते हैं अंतिम दिनों के संत बनकर, अंतिम दिनों के चेले। लोगों और संस्थाओं को अक्सर उपनाम दिए जाते हैं। उपनाम ये कभी कभी छोटा किया जाता है या वो किसी घटना विशिष्टता से उत्पन्न होता है। हालांकि उपनाम को असली नाम का दर्जा नहीं दिया जाता, वह सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रभु ने गिरजे को दोनों प्राचीन और आधुनिक काल में उपमान दिए गए हैं। नए नियम के समय उसे ईसाई बुलाया जाता था क्योंकि वो ईसा मसीह को मानते थे। वो नाम निंदकों ने अपमान के रूप में दिया था, पर आज वो उसे प्रतिष्ठा मिली है। हमें आदर है कि हम ईसाई गिरजा बुलाए जाते हैं। हमारे सदस्यों को मोमन बुलाया गया है क्योंकि हम मोमन की पुस्तक मसीह की एक और गवाह को मानते हैं। कुछ मोमन के शब्द का प्रयोग और तरीके से करते हैं, उन टोलियों को भी शामिल करते हैं जिन्होंने गिरजा छोड़ा और अलग दल स्थापित किया है। इससे संभ्रम बढ़ता है। हम संचार माध्यम और के लिए आभारी हैं कि वे मोमन का प्रयोग इस प्रकार से नहीं करते कि गिरजे के लोगों को किसी बहुविवाह प्रथा के दल या रूढ़ावादी दल से मिलाए। मैं साफ कहना चाहता हूं कि किसी भी बहुविवाह प्रथा के दल से या रूढ़ीवादी दल से इस ईसा मसीह के गिरजे का कोई ताल्लुकात नहीं है, यानी जो अंतिम दिनों के संतों का है। हालांकि मोमन ये गिरजे का पूरा नाम नहीं है, हालांकि वह हमारे दिंदकों ने अत्याचार के पुराने दिनों में दिया था, वह एक अनुकूल उपमान बना है गिरजे के सदस्यों के बारे में बात करते हुए, संस्था के बारे में नहीं। लोगों को मामन इस ढंग से प्रयोग करने की से रोकने की जरूरत नहीं है, पर हमें गिरजे के संबंध में पूरे नाम का प्रयोग जारी रखना चाहिए, मतलब मॉर्मन गिरजे का प्रयोग निषेध है। गुजरे सालों में मैंने दुनिया भर में सौंपे कार्य पूरे किए हैं। मुझे अक्सर पूछा गया है, क्या तुम मॉर्मन गिरजे से हो? मेरा जवाब रहा है, मैं ईसा मसीह के गिरजे का सदस्य हूँ। हम मॉर्मन की पुस्तक मानते हैं। मॉर्मन एक प्राचीन अमेरिका का पैगंबर नेता था। वो पुस्तक ईसा मसीह की एक और गवाह है, और हमें कभी कभी मॉर्मन बुलाया जाता है। ऐसे सभी स्थितियों में इस जवाब की अच्छी तरह स्वीकार किया गया है, और कई बार मौका खुला है गिरजे की बहाली का बयान देने का। भाइयों और बहनों, सोचो हम कितना प्रभाव डाल सकते हैं गिरजे के पूरे नाम का प्रयोग करने से, जैसे प्रभु ने घोषणा की है कि हम करें। अगर तुम उस वक्त पूरे नाम का प्रयोग नहीं कर सकते, तो कहो, मैं ईसा मसीह के गिरजे से हूँ। बाद में समझाओ अंतिम दिनों के संतों का। कुछ पूछेंगे, तुम्हारे mormon.org इंटरनेट साइट और कई प्रचार माध्यम के अभियानों में मॉर्मन का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे मैंने कहा, सदस्यों को मॉर्मन बुलाना योग्य हो सकता है। व्यावहारिक रूप से दूसरे मजहबों के लोग अक्सर हमारी साइट पर मॉर्मन ये शब्द खोजते हुए पहुंचते हैं, पर वहां पहुंचने पर गिरजे का पूरा नाम मुख्य पन्ने पर समझाया जाता है, और हर एक दूसरे पन्ने पर भी पूरा नाम है। व्यावहारिक रूप से लोगों को गिरजे का पूरा नाम टाइप करवाना योग्य नहीं है जब वो हमारी साइट खोजना चाहते हैं। ये व्यावहारिक बातें जारी रहेगी, पर सदस्यों को गिरजे के पूरा नाम का जब मुमकिन प्रयोग करना चाहिए। हम परिवारों, गिरजे की क्रियाओं में और अपने दैनिक पारस्परिक व्यवहार में स्पष्ट करना चाहते हैं कि ईसा मसीह का अंतिम दिनों के गिरजे का वो नाम है जिसका प्रयोग प्रभु ने निर्देशित किया है। हाल में हुई मतगणना से पता पड़ा है कि अभी भी लोग समझते हैं कि मॉर्मन शब्द गिरजे के सदस्यों को दर्शाता है। नहीं समझते कि मॉर्मन शब्द गिरजे को दर्शाता है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि मॉर्मन ईसाई है। हमारी हेल्पिंग हैंड संस्था के दुनिया भर तूफान, भूकंप, बाढ़ और अकाल के बाद की हुए सेवा के बाद भी वो हमारे मानवतावादी प्रयासों को ईसाई संस्था के प्रयास से नहीं जोड़ते। क्या लोगों को यह समझने में आसानी नहीं होगी कि वो मसीह को मानते हैं, कि हम मसीह को मानते हैं, अगर हमने खुद को वह ईसा मसीह का गिरजा अंतिम दिनों के संतों का के पूरे नाम से हमें घोषित किया? इस प्रकार जो मॉर्मन शब्द सुनेंगे, वो उस शब्द को हमारे गिरजे के प्रकट किए नाम से जोड़ेंगे और ईसा मसीह से भी जोड़ेंगे। पहले प्रधानों ने उनके फरवरी 23, 2001 के खत में कहा, प्रकट किए नाम का प्रयोग वह ईसा मसीह का गिरजा अंतिम दिनों का ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है, जैसे हमारे मसीह का नाम, मसीह के नाम के दुनिया भर में प्रचार हम कर रहे हैं। इसलिए हम विनती करते हैं कि हम गिरजे के पूरे नाम का प्रयोग जब मुमकिन करें। 1928 अक्टूबर की सामान्य सभा में प्रधान जॉर्ज अल्बर्ट स्मिथ ने कहा, भाइयों और बहनों, जब तुम यहाँ से जाओगे, तुम दुनिया के कई और मजहबों के लोगों के साथ ताल्लुकात रखते होगे, पर याद रखो, दुनिया में एक ही गिरजा है जिसका नाम दैवी निर्देशन से ईसा मसीह पर आधारित है। भाइयों और बहनों, हम भी ये याद रखें, सम्मेलन से जाते हुए हमारी उसके बारे में गवाह सुनाओ, उसका प्यार हमेशा हमारे दिल में रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
We express
हम सभी वक्ताओं और टैबरनेकल क्वायर को मधुर संगीत के लिए धन्यवाद देते हैं। अब हमारे विशेषाधिकार होगा अपने प्रिय प्रॉफेट प्रेजेंट थॉमस एस मॉन्सन से सुनने के लिए। उनके बाद हम उनसे उनके लिए प्रार्थना करते हैं और सिस्टर मॉन्सन के लिए। उनके बाद क्वायर गाएगी आई बिलीव इन क्राइस्ट। प्रार्थना फिर दी जाएगी 70 के एल्डर जेम्स पी मार्टिनो द्वारा। फिर से कॉन्फ्रेंस का अंतिम सेशन दोपहर के 2 बजे शुरू होगा।
My beloved brothers,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सुबह हमने सुंदर संदेश सुने हैं और मैं हम सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं विशेष रूप से अपने एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स को धन्यवाद देता हूँ कि वह हमारे साथ हैं। हम तुम्हें से प्यार करते हैं बॉब। जब मैं मनन कर रहा था कि मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने सोचा कि मैं अनुभूतियां और प्रभाव आपसे कहूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे अपनी बातों में मार्गदर्शन मिले। मैंने इस पृथ्वी पर 84 साल तक रहा हूं। आपकी स्थिति को समझाने के लिए, मैं उस वर्ष पैदा हुआ था जब चार्ल्स लिंडबर्ग ने न्यूयॉर्क से पेरिस तक एक ही इंजन वाले प्लेन पर यात्रा की थी। इन 84 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। मनुष्य द्वारा चांद की यात्रा कर चुका है। असल में अतीत की विज्ञान काल्पनिक कथाएं आज की सच्चाई बन गई हैं, जिन्हें वे पुराने घुमाकर नंबर डायल करने वाले टेलीफोन और पुराने टाइपराइटर की याद है। उनके लिए आज की तकनीकी बहुत ही अचरज भरी है। समाज के नैतिक मूल्य भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। वह व्यवहार के जो पहले अनुचित थे, आजकल उचित माने जाते हैं, बल्कि बहुत लोगों से द्वारा अपनाए भी गए हैं। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल में मैंने पढ़ा था मुख्य रबी जॉनथन सैक्स से 1960 में लगभग सभी पश्चिम समाज में नैतिक क्रांति हुई थी, जिसमें पारंपरिक नियमों और परित्याग कर दिया गया था, जिसके अनुसार लोग अपने व्यवहार का नियंत्रण करते थे। आप सिर्फ बीटल्स का ऑल यू नीड इज लव गया, इसके स्थान पर यह कहावत आ गई, जो आपके लिए करता है उसे करो। 10 आज्ञाओं को 10 रचनात्मक सुझाव के रूप में दोबारा गया। रबी सैक्स खेत से आगे बढ़ते हैं। हमने अपने नैतिक नियमों को इतनी लापरवाही से छोड़ दिया है कि अपने आर्थिक सत्रों को गंवा रहे हैं। संसार का बहुत बड़ा हिस्सा है जहां धर्म की बात अतीत की बात हो गई है, और उन संसारिक विचारों का विरोध कोई नहीं करता जो लोगों को वस्तुओं खरीदने, धन करने, भड़कीले वस्त्र पहनने और दिखवाने करने के लिए उत्सुक करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यह दुर्भाग्य से ये बातें हमारे आसपास के संसार का वर्णन करती हैं। क्या हम बहुत अधिक चिंता करने और सोचने की जरूरत है कि हम इस संसार में किस तरह जीवित पाएंगे? नहीं, असल में हमारे जीवन में यीशु मसीह का सुसमाचार है, और हम जानते हैं कि नैतिकता आउट ऑफ फैशन नहीं है कि हमारी मार्गदर्शन करने के लिए हमारी अंतरात्मा है और अपने कामों के लिए हम जिम्मेदार हैं। यद्यपि संसार में बदल गया है, परमेश्वर के नियम नहीं बदले हैं, वे बदले नहीं है और बदलेंगे नहीं। 10 आज्ञाएं वही आज्ञाएं हैं, वे सुझाव नहीं हैं। इसका हर एक हिस्सा जरूरी है जितना था जब परमेश्वर ने इन्हें इसराइल के बच्चों के लिए दिया था। यदि हम ध्यान से सुने तो हमें अभी भी परमेश्वर की वाणी की प्रतिध्वनि सुनाई देगी, तू मुझे छोड़कर दूसरे की ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, तू विश्राम दिन के पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने पिता और माता का आदर करना, तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना। हमारे व्यवहार के नियम स्पष्ट हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो सकता। यह केवल 10 आज्ञाएं में ही नहीं लेकिन पहाड़ पर उपदेश भी हैं। उस उद्धारकर्ता ने तब दिए थे जब वहां स्वयं पृथ्वी पर थे, वे उसकी सारी शिक्षाओं में मिलते हैं। यह वर्तमान के प्रतिकरण के शब्दों में मिलते हैं। स्वर्ग में हमारे पिता कल आज एक सच हैं। भविष्यवक्ता मॉर्मन हमें बताते हैं कि परमेश्वर अनंत से अकस्मान हैं और अनंत तक अकस्मान रहेंगे। इस संसार में जहां लगभग सब कुछ बदल जा रहा है, उसकी स्थिति ऐसी है जिस पर भरोसा कर सकते हैं। एक ऐसे लंगर है जिसमें मजबूती से पकड़ सकते हैं, सुरक्षा हो सकती है, कहीं ऐसा न भयंकर तूफान हमें उड़ा ले जाए। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि जो संसार में कामों को करते हैं वे आपसे अधिक मजा लेते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बताता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे जीवन में अधिक खुशी या हमारे आत्मा को अधिक शांति दे सकता है सिवाय के एहसास के जो उद्धारकर्ता का अनुसरण करें और आज्ञाओं का पालन करने से मिलती है। वह एहसास उन सब कामों में नहीं होता जिसमें यह संसार इतना व्यस्त रहता है। अपोस्टल पॉल ने सच्चाई को बताया, प्राकृत मनुष्य परमेश्वर के आत्मा द्वारा प्राकृषित सत्य को ग्रहण नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए मूर्खता है। वह उन्हें समझे नहीं पाती क्योंकि वह आत्मा के आधार पर ही परखी जा सकती हैं। शब्द प्राकृतिक मनुष्य हमें के किसी के लिए भी उपयोग हो सकता है यदि हम ऐसा बनना चाहते हैं। यह जरूरी है कि हम उन बातों को स्वीकार कर दें हमारे स्तर से मेल नहीं खाती। कभी भी हम उसे न छोड़ें जिस पर हम बहुत चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन। हालांकि हम इनका सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार होंगे, इनसे सीखेंगे और इन पर विजय पाएंगे यदि हमारे जीवन की बुनियाद सुसमाचार और हमारे हृदय में उद्धारकर्ता का प्रेम है। इस संसार में रहने परंतु इस संसार का न होने के रूप में आइज़ाया ने बताया कि सही करने से शांति मिलती है। इस संसार में रहने परंतु इस संसार का न होने के रूप में यह जरूरी है कि हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना के द्वारा बातचीत करें। वह चाहता है कि हम ऐसा करें, वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। उद्धारकर्ता में चेतावनी देते हैं, जैसा कि 3 नफी अध्याय 18 में लिखा है, जागते रहो और सदैव प्रार्थना करते रहो, नहीं तो तुम बहकाके में पड़ जाओगे, क्योंकि शैतान चाहता है कि, इसलिए तुम पिता से सदैव मेरे नाम में प्रार्थना किया करो। तुम जो कुछ मेरे नाम पर पिता से पाने का विश्वास कर मांगोगे, और अगर तुम्हारी मांग उचित रही तब सुनो, वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरी प्रार्थना की शक्ति की अपनी गवाही 12 वर्ष की आयु में पाई थी। मैंने कुछ धन कमाने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की थी और $5 बचा पाया था। यह उस महान मंदी के दौरान था जब $5 बहुत अधिक हुआ करता था, विशेषकर मुझ जैसे 12 साल के लड़के के लिए। मैंने अपने सारे सिक्के, जो कि कुछ $5 के थे, अपने पिता को दिए थे और उन्होंने मुझे $5 का एक नोट दिया था। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ विशेष खरीदने की योजना की थी। इतने साल बाद मुझे याद नहीं वह क्या था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वह धन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय हमारे पास धोने की कपड़े की मशीन नहीं थी, इसलिए मेरी माँ हर सप्ताह हमारे कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री भेजती थी। वो कुछ दिनों बाद लॉन्ड्री से हमारे गीले कपड़े आते थे, जिनके वो पीछे रस्सी पर सुखाने के लिए डाल देती थी। मैंने $5 के नोट को अपनी जीन्स के पॉकेट में रखा था, और जैसा कि शायद आप समझ ही गए होंगे, मेरी जीन्स को लॉन्ड्री के लिए भेज दिया गया। जब मुझे समझ से आया कि क्या हुआ था, मैं बहुत चिंतित हो गया। मैं जानता था कि लॉन्ड्री में कपड़ों को धोने से पहले उनकी जेबों की जांच की जाती थी। यदि मेरा नोट उस समय ना भी मिला तो मुझे मालूम था कि धुलाई के समय वह कहीं किसी गिर जाएगा और लॉन्ड्री में काम करने वाले इसे उठा लेंगे और वह नहीं जानेंगे किसको लौटाना है। मुझे $5 वापस मिलने की उम्मीद बहुत ही कम थी। मैं उस नोट को चाहता था, मुझे उस नोट की जरूरत थी। उसे कमाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने महसूस किया केवल एक ही काम कर सकता था जिसमें कर सकता था। अपनी परेशानी में मैंने अपने स्वर्ग के पिता के पास गया और प्रार्थना की कि वो नोट मुझे मिल जाए। 2 बहुत लंबे दिन बाद जब मुझे पता चला कि हमारे गीले कपड़े वापस आने का समय हो गया है, मैं खिड़की के पास बैठकर इंतजार करने लगा। जैसे ही लॉन्ड्री का ट्रक आया, मैं हृदय से जोर से धड़कने लगा। जैसे ही गीले कपड़े हमारे घर अंदर आए, मैं जल्दी से अपनी जीन्स उठाई और अपने कमरे में भाग गया। कांपते हुए मैंने अपनी जीन्स में पॉकेट में हाथ डाला, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। तुरंत तभी मेरी उंगलियां ने उस गीले $5 के नोट को छुआ। जैसे ही मैंने इसे जेब से बाहर निकाला, मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपने स्वर्ग के पिता को धन्यवाद की प्रार्थना की, क्योंकि मैं जानता था कि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। उस समय के बाद से मुझे अनगिनत प्रार्थनाओं का उत्तर मिला है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने प्रार्थना नहीं की हो। यह वह संबंध है जो मुझे बहुत संजोकर रखता हूँ। इसके बिना मैं खो चुका होता। यदि आपके पास ऐसा संबंध नहीं है अपने स्वर्ग के पिता के साथ, मैं आपको उस लक्ष्य के प्रति काम करने के लिए कहता हूँ। जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने जीवन में उसकी प्रेरणा और मार्गदर्शन पाने की योग्य हो जाते हैं। यह हम सभी के लिए बहुत जरूरी है और हमारी आत्मिक रूप से इस पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हैं। यह प्रेरणा और मार्गदर्शन ऐसे उपहार हैं जो हमें मुफ्त में देते हैं, लेकिन हमें इन्हें पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बहुमूल्य खजाने हैं। मैं हमेशा विनम्र और आभारी होता हूँ जब मुझे स्वर्गीय पिता मुझे अपनी प्रेरणा द्वारा बातचीत करते हैं। मैंने इसे पहचानना, इस पर भरोसा करना और उसका अनुसरण काम करना सीखा है। कई बार मुझे इसका इस प्रकार की प्रेरणा मिली है। अगस्त 1987 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी के मंदिर के समर्पण दिवस को एक नाटकीय अनुभव हुआ था। समर्पण दिवस के पहले दिन अध्यक्ष एज़रा डेविड बेंसन हमारे साथ थे, लेकिन घर वापस चले गए थे। इसके लिए बाकी बचे सत्रों का संचालन करने के लिए मुझे मौका मिला। शनिवार को हमारे सत्र डच सदस्यों के लिए, जो कि फ्रैंकफर्ट मंदिर के जिले के थे, मैं नीदरलैंड के हमारे चार बेहतरीन मार्गदर्शकों में से एक भाई पीटर मॉरिक को अच्छी तरह जानता था। सत्र से ठीक पहले मुझे महसूस हुआ कि मुझे भाई मॉरिक से उनको कहने के लिए कहना चाहिए, लेकिन वह मंदिर में नहीं थे। जब मुझे मैं खड़ा हुआ, मुझे बताया गया कि ब्रदर मॉरिक टेंपल में नहीं थे और वो कहीं और काम से गए हुए थे। सत्र शुरू करने से ठीक पहले मुझे अल्डर, जब मैं मंच पर खड़ा हुआ, एक दूसरी प्रेरणा मिली कि मुझे पीटर मॉरिक से पहला वक्ता के रूप में घोषणा करनी चाहिए। मुझे अब एल्डर एसे ने बताया था कि वो टेंपल में नहीं थे। फिर भी प्रेरणा पर भरोसा करते हुए मैंने गायक मंडली की प्रस्तुति प्रार्थना की घोषणा कर दी और बताया कि हमारे पहले वक्ता भाई पीटर मॉरिक होंगे। जब मैं अपनी सीट पर वापस आया, मैंने एल्डर एसे की ओर देखा और पाया उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैंने भाई मॉरिक की पहली वक्ता के रूप में घोषणा की थी। वो जानते थे, कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे नहीं जानते थे मैंने ब्रदर मॉरिक की घोषणा क्यों की थी जब वे मंदिर में कहीं थे ही नहीं। जब ये सब कुछ हो रहा था, पीटर मॉरिक क्षेत्रों मार्गदर्शकों के साथ पोर्टस्ट्रासिस के सभी सभा में थे। जैसे उनकी सभा चल रही थी, वह अचानक एल्डर हॉक्स की ओर मुड़े, जो कि तब क्षेत्रीय प्रतिनिधि थे, और पूछा, आप मुझे कितनी जल्दी मंदिर पहुंचा सकते हैं? एल्डर हॉक्स, जो स्पोर्ट्स कार बहुत तेज चलाते थे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 10 मिनट में पहुंचा सकता हूं, लेकिन तुम मंदिर क्यों जाना चाहते हो? भाई मॉरिक ने स्वीकार किया कि वे नहीं जानते थे, लेकिन वे उन्हें वहां होना था। वे तुरंत दोनों मंदिर के लिए निकल गए। गायक मंडली के सुंदर गीत के दौरान मैं चारों ओर देख रहा था कि ब्रदर मॉरिक दिखाई दें मुझे, लेकिन वह दिखाई नहीं दिए। फिर भी मुझे आश्चर्य था कि मैं चिंतित नहीं था। मुझे मधुर पक्का आश्वासन था कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही आरंभिक प्रार्थना समाप्त हुई, भाई मॉरिक ने मंदिर के अगले दरवाजे से प्रवेश किया। फिर भी उन्हें पता नहीं था कि वह वहां क्यों थे। जब वे जल्दी जल्दी हॉल के आ रहे थे, उन्होंने मॉनिटर पर मेरी शक्ल देखी और घोषणा सुनी, अब हम भाई पीटर मॉरिक से सुनेंगे। एल्डर ऐसे को चकित करते हुए पीटर मॉरिक तुरंत कमरे में आए और मंच पर अपने स्थान ग्रहण किया। सत्र के बाद भाई मॉरिक ने मैंने चर्चा की कि जो भी सब हुआ था, मैंने उस प्रेरणा पर मनन किया था जो उस दिन न केवल मुझे मिली थी बल्कि भाई पीटर मॉरिक को भी मिली थी। उस आश्चर्यजनक अनुभव ने मुझे इस प्रकार की प्रेरणा पाने के योग्य होने के लिए फिर जब यह मिलता है इस पर भरोसा करने और इसका अनुसरण काम करने सिखाया। मैं जानता हूँ कि प्रभु उस सत्र के जो सदस्य थे चाहते थे कि ब्रदर भाई पीटर मॉरिक की टेस्टिमोनी सुने। मेरे भाइयों और बहनों, जीवन के तूफान और कठिनाइयों के सामने करने के लिए उससे प्रार्थना करना, स्वर्गीय पिता के साथ बातचीत करना जरूरी है। प्रभु हमें उनके निकट आने का निमंत्रण देते हैं और हमारे निकट आएंगे। यदि हम परिश्रम से उसकी खोज करते हैं तो हम उसे पाएंगे। जबकि हमारे चारों ओर संसार बदल रहा है और हमारी आँखों के सामने समाज के नैतिक मूल्य की डोर टूट रही है, यदि हम परिश्रम करें उसकी खोज करें तो हम उसे पा सकेंगे। हम प्रभु का वादे को याद रखें, मत डरो क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दहीने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। काश हमें यह आशीष मिले। क्या वादा है, काश हमारा यह आशीष मिले। मैं हमारे प्रभु उद्धारता यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ। ईसा मसीह, आमीन।
our Father in heaven.
Sorry, कि मैं रहने वाले परमेश्वर पिता नम्रता के साथ हम यहाँ पर आएंगे. भजन और वचन से हमें बहुत शिक्षा पाए. हम आवारी हैं. प्रभु के वचन सुनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम आगे बढ़ सको और मनन करो और आपकी निर्देशन प्राप्ति करो और समझ सके कि हम आपके समीप पा सके. आपके मदद करो परमेश्वर पिता कि हम आपके पुत्र जैसे बन सके ताकि हम उसके गवाही बन सके आप हमसे इच्छा चाहना हो कि आदेश के पालन कर सके. हम प्रार्थना करें कि आपके वचन संसार के हर एक राष्ट्र में पहुंच सके ताकि उन्हें आपके वचन समझ सके.
Help us to remember what we have felt, that we may cultivate within us a greater desire.
Stronger and bolder. शक्तिवान बन सके. ऐसे क्रिस ऐसा मसीह के नाम में.
This has been a broadcast of the
181st Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ka 181 ardhvarshik general sammelan tha. Ise girjaghar ke general adhyakari aur general padadhikari se chuna gaye vyaktiyon ne sambodhan kiya aur is satr ka sangeet Mormon Tabernacle Choir dwara diya gaya tha. Is prasaran Bonneville Distribution द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया. बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम का की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित हैं.